ओशो अमृत वाणी प्रवचन माला मरो हे जोगी मरो प्रवचन संख्या 39।
प्यारे मित्रों, आप अपने मित्रों को बताएं कि यदि वे भी अपने व्हाट्सएप पर ओशो के प्रवचन चाहते हैं तो इस नंबर पर ओशो लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें 8295435000।
इसलिए कहते हैं गोरख की, ऐसा मत सोच लेना कि मैं मारने धारने की बात कर रहा हूं। इसमें ना मांस है ना खून है ना जीवन, एक थोती धारणा है। और दुनिया में अलग अलग तरह के मन हैं, जितनी जातियां हैं, जितनी संस्कृतियां हैं, जितने समाज हैं, अलग अलग तरह का मन पैदा करते। फिर जैसा मन पैदा हो जाता है वो उसी के अनुसार चलता है, उससे भिन्न चलने में अड़चन हो जाती है, उससे भिन्न का भरोसा ही नहीं आता कि मैं चल सकता हूं। तुम अपनी ही जांच करना और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन समाज के द्वारा दिया गया एक संस्कार है और कुछ भी नहीं। तुम जिस दिन समझोगे उसी दिन गिरा सकते हो। पावड़िया पग फिर से अवधू लोहे छीजंत काया, और कहते हैं गोरख कि ऊपर के वेश इत्यादि बदल लेने से कुछ भी ना होगा, क्योंकि हमने खड़ाओं से भी पैर फिसलते देखा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पावड़िया पग फिल से अबधु, खड़ाओं तक से पैर फिसल जाते हमने देखा है। खड़ाऊं यानी साधु संन्यासी बजाते फिरते ना खड़ाऊं, खड़ाओं से भी पैर को फिसलते देखा है। खड़ाऊं नहीं बचा सकती, भीतर का बोध ही बचा सकता है। ऊपर के व्यवच उपचार, ऊपर के क्रियाकांड नहीं बचा सकते, केवल अंतर की ज्योति ही बचा सकती है। पावड़िया पग फिल से अबधू लोहे छीजंत काया, और तुम शरीर को कितना ही संभाल लो, योग तप व्यायाम लोहे जैसा बना लो शरीर को, तो भी छीज ही जाएगा एक दिन देर अबेर। लोहे छीजंत काया, हमने तो लोहे जैसे शरीर को भी छीजते देखा है, मरते देखा है। इसलिए इस पर व्यर्थ समय खराब मत करो। सुंदर से सुंदर देह भी सड़ जाएगी, सबल से सबल देह भी गल जाएगी। और तुम हैरान होगे ये जानकर कि जितनी सबल देह बनाने की कोशिश की जाती उतनी बुरी तरह गलती, क्योंकि जबरदस्ती हो जाती। गामा के पास सबल देह थी, और क्या देह चाहिए, लेकिन सड़सड़ के मरा गामा, क्षय रोग से मरा। जरूरत से ज्यादा शरीर को बांधने की कोशिश की, अनाचार हो गया। दुनिया के पहलवान अक्सर बुरी तरह से मरते, बुरी बीमारियों से मरते, अस्वाभाविक चेष्टा का परिणाम बुरा होता है। तुम सोचते हो पहलवानों की देह स्वाभाविक है, नहीं, जरा भी स्वाभाविक नहीं। वे जो मसलें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं वे स्वाभाविक नहीं है, चेष्टागत है। हजार हजार दंड बैठक रोज लगा लगा के जबरदस्ती कर करके मसलों को उभारा गया है। उनके उभारने में ऊपर से तो बड़ी ताकत मालूम होने लगी, लेकिन भीतर सब खोखा हो गया है। ये स्वाभाविक नहीं है प्रक्रिया। गोरख कहते हैं कि लोहे छीजंत काया, हमने तो ऐसे लोगों के देह को भी आकर छीनते देखा जो लोहे जैसे मालूम पड़ते थे। इसलिए व्यर्थ की चेष्टाओं में मत लगो। योगी लग जाते हैं इस तरह की चेष्टाओं में कि काया को पवित्र करें, काया को दृढ़ करें, काया को मजबूत करें, काया को ऐसा करें वैसा करें, काया में ही उलझ जाते हैं। काया की माया के ऊपर उठ ही नहीं पाते। साक्षी तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं, घर की सफाई में ही लग गए, मालिक की तो याद ही भूल गई। और घर तो सभी गिर जाएंगे, झोपड़ी भी गिरते हैं और महल भी गिर जाते। पावड़िया पग फिल से अबथू, बड़ा प्यारा प्रतीक लिया है कि खड़ाओं से भी पैर फिसलते। देखे हम सब जानते खड़ाओं से भी पैर फिसल जाते हैं। सच तो ये खड़ाओं से जितने जल्दी फिसलते और किसी चीज से नहीं फिसलते। खड़ाओं पे चल के देखना जरा, खड़ाओं से और जल्दी फिसल जाते। क्यों? क्योंकि खड़ाऊं एक अस्वाभाविक चीज है, पकड़ पकड़ के चलना होता है। उंगलियों के बल पर ही खड़ाऊं को संभालना होता है, बजनी भी होती, लकड़ी की भी होती। औपचारिक रूप से जो लोग जीते हैं, ऊपर ऊपर का आडंबर करके जो जीते, उनके गिर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे तो सीधे साधे सरल लोग अच्छे, उनके गिरने का डर नहीं है, वे खड़ाओं पे चलते ही नहीं। उनके गिरने का डर नहीं है क्योंकि वो कोई धोखा और पाखंड करते ही नहीं, वे तो सीधे साफ हैं। प्रकृति के अनुकूल चलते हैं तो गिरने का कोई डर नहीं। गोरख सहज योग के पक्षपाती, वे कहते हैं जहां तक बन सके प्रकृति के अनुकूल ही परमात्मा को साधना, प्रतिकूल साधने की कोशिश कठिनाइयों में ले जाएगी। सम्यक आहार करना, न कम न ज्यादा, तो फिसलोगे नहीं। कुछ हैं जो कम आहार करते हैं, कुछ हैं जो ज्यादा आहार करते हैं, दोनों के फिसलने का डर है। जो कम आहार करता है वो भी 24 घंटे आहार की सोचता रहेगा, और जिसने ज्यादा कर लिया है वो 24 घंटे ज्यादा करने के कारण पीड़ित बोझिल रहेगा। जिसने कम किया है उसके भीतर बेचैनी रहेगी क्योंकि भूख कायम है, भूख मांग करेगी, और जिसने ज्यादा कर लिया है वो बोझिल हो गया, उस पर तंद्रा छा जाएगी, मूर्छा छा जाएगी, उसे ध्यान मुश्किल हो जाएगा। दोनों के लिए ध्यान मुश्किल है। जो भूखा ध्यान करने बैठा है उसे भूख की याद आएगी, भूखे भजन न होई गोपाला, और जो ज्यादा भोजन करके बैठ गया उसको नींद आएगी, क्योंकि जैसे ही ज्यादा भोजन कर लिया शरीर कहता है विश्राम करो ताकि पचा सकूं, अब सब काम बंद करो, अब सारी शक्ति पचाने में ही लगानी जरूरी। इसलिए तो भोजन करने के बाद एकदम नींद आने लगती। ज्यादा कर लोगे तो उसका अर्थ इतना हुआ कि अब पेट कहता सारी शक्ति पचाने में लगानी, बुद्धि से भी पेट अपनी शक्ति को वापस ले लेता है, इसलिए नींद आती है। नींद का वैज्ञानिक कारण यही है भोजन के बाद, कि जो शक्ति बुद्धि में काम करती है, मस्तिष्क को जगा के रखती है, पेट उसको भी वापस बुला लेता है, क्योंकि संकट काल की स्थिति पैदा कर दी तुमने, अब कहीं भी शक्ति जा नहीं सकती, पेट में ही होनी चाहिए तभी पच सकेगा, नहीं तो पचेगा नहीं तो बोझ हो जाएगा, शरीर पर जहर हो जाएगा। और जब मस्तिष्क की शक्ति पेट में चली जाती तो तुम्हें नींद आने लगती। नींद का और कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उपवास करोगे तो रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब उपवास किया तो पेट को शक्ति की जरूरत ही नहीं है पचाने के लिए, तो शक्ति लौट लौट के मस्तिष्क में चली जाएगी, रात भर तुम्हें जगाए रखेगी। सम्यक आहार चाहिए, न कम न ज्यादा। सम्यक व्यायाम चाहिए, न कम न ज्यादा। सारी चीजें सम्यक चाहिए। सम्यक शब्द को स्मरण रखना, क्योंकि वह सहज योग की आधारशिला है। पावड़िया पग फिल से अबधू, लोहे छीजंत काया, नागा मुनि दूधाधारी एता जोग न पाया। गोरख कहते हैं तुमसे स्पष्ट कह देता हूं कि नग्न रहने से किसी ने कभी परमात्मा नहीं पा लिया है। नग्न तो सारी प्रकृति है, तुम भी नग्न हो जाओगे तो क्या होगा। मौन रहने से किसी ने परमात्मा नहीं पा लिया है। मौन तो पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं। मौन रहने से कोई परमात्मा को नहीं पा लिया है। नागा मुनि दूधाधारी और तुम दूध ही दूध पी के रहोगे तो भी परमात्मा को नहीं पालोगे, क्योंकि सभी बच्चे दूध ही पी के रहते हैं, कोई परमात्मा को नहीं पाल लेता। इसका ये अर्थ मत समझ लेना कि गोरख कह रहे हैं मौन अच्छा नहीं, कि गोरख कह रहे हैं कि नग्नता में कोई पाप है। नहीं, गोरख इतना ही कह रहे हैं कि नग्न रहने में तुम्हें सुखद मालूम पड़ता हो, प्रीतिकर लगता हो, स्वाभाविक लगता हो, मजे से रहना, मगर ये मत सोच लेना कि नग्न रहने से ही कोई परमात्मा को पा लेता है। कपड़े पहने पहने भी परमात्मा पाया जाता है। परमात्मा और आदमी के बीच कपड़े बाधा नहीं है, बाधा मन है। इसलिए कपड़ों को गिरा के ये मत सोच लेना कि हो गया काम पूरा। जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि यही कर लेते, सारी जिंदगी का अभ्यास ये होता, पांच सीढ़ियां पार करते, एक एक सीढ़ी के पार करने में दो दो तीन तीन चार चार साल लग जाते, पांचवी सीढ़ी पे जाके नग्न हो पाते। 15-20 साल की लंबी चेष्टा और कुल परिणाम इतना कि नग्न हो गए। इससे कुछ मिलना चाहेगा, तुम जरा जैन दिगंबर मुनि को देखना, उसके चेहरे पर तुम कोई प्रतिभा की आभा न पाओगे, आनंद का अहोभाव न पाओगे, सब सूखा सूखा, सब रूखा रूखा, जैसे कोई वृक्ष सूख गया हो जिसमें पत्ते नहीं लगते, फूल भी नहीं आते, जिस पर पक्षी भी अपना नीड़ नहीं बनाते। लेकिन जो मानते हैं जैन मुनि को, वो तो कहेंगे आहा कैसा वैराग्य, अपूर्व वैराग्य। हमारी मान्यताएं ऐसी हैं कि अगर हमारे चित्त में धारणाएं बैठी हों तो हम उन्हीं धारणाओं के अनुसार देखते हैं। तुम जाके देखोगे तो तुम्हें कुछ भी ना दिखाई पड़ेगा कि कौन सा आनंद है, कौन सा परमात्मा का अनुभव हुआ, कौन सी समाधि है, न तो कोई समाधि का संगीत बजता सुनाई पड़ता है। यह आदमी बिल्कुल मुर्दे जैसा हो गया है। लेकिन जो मानते हैं वो कुछ और कहेंगे, उनकी देखने की ढंग, उनकी आंख पे चश्मा है, सबकी आंखों पे चश्मे हैं और चश्मे उतारने जरूरी है, और जो सब चश्मे उतार देता है वही मन से मुक्त होता है। मन सारे चश्मों का नाम है, हिंदू चश्मा, मुसलमान, जैन चश्मा, चश्मे ही चश्मे हैं। और जब आंख नग्न हो जाती, स्वच्छ होकर देखती बिना किसी चश्मे के, तो वह दिखाई पड़ता है जो है। नग्न होने का कोई विरोध नहीं है गोरख को, न मौन होने से कोई विरोध है। इतना ही कह रहे हैं कि इसी को सब मत समझ लेना, क्योंकि कोई आदमी मौन तो हो सकता है और भीतर सारा पागलपन चल रहा है, ऊपर से मौन बैठ गए। सच तो यह है कि ऊपर से मौन बैठ जाओगे तो जो जो कहकर निकाल लेते थे वो भी भीतर भीतर घूमेगा, निकलने की भी जगह ना रही, निकास भी ना रहा। जैसे घर का नाली थी उसको भी बंद कर दिया, उसमें से कुछ बाहर निकल जाता था कूड़ा कचरा, अब वो भी बाहर नहीं जाता, वो भीतर ही भीतर घूमेगा। बातचीत करके इसलिए तो लोग हल्का अनुभव करते, मिल बैठे दो यार, जरा बातें हो गई, कुछ तुमने कहीं कुछ उनने कहीं, कुछ तुमने सुनी कुछ उनने सुनी, दोनों हल्के होकर घर आते, कहते जरा मित्र मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। आनंद कुछ भी नहीं आया, कुछ कचरा तुमने उसमें डाला, कुछ कचरा उसने तुम में डाला, तुम भी हल्के हुए कुछ, वो भी हल्का हुआ कुछ, फिर नया कचरा पुराने से बेहतर लगता है। जैसे आदमी मरघट ले जाता है किसी को कंधे पर रखकर, तो रास्ते में कंधे बदल लेते, इस कंधे से अर्थी हटा ली, इस कंधे पर रख ली, अर्थी का वजन तो वही है लेकिन नए कंधे पर थोड़ा कम मालूम पड़ता है, फिर थक जाएंगे तो फिर दूसरे कंधे पर रख लेंगे। ऐसे तुम कचरे का लेन देन करते रहते हो, नया कचरा थोड़ा अच्छा लगता है, अपरिचित है। पुराने कचरे से तुम उब गए थे, किसी की खोपड़ी में डाल देना चाहते थे। जो आदमी मौन होकर बैठ गया उसकी मुसीबत समझो, अब सारा कचरा उसी के भीतर घूमेगा। ऊपर से तो मौन, भीतर विक्षिप्त होने लगेगा। मौन पर्याप्त नहीं, पहले ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है भीतर अब शांति आ गई, अब भीतर कुछ है ही नहीं। फिर तुम अगर मौन रहो तो उस मौन में एक सौंदर्य होगा। और ऐसा ही नग्नता के संबंध में भी समझना, भीतर तुम निर्मल हो गए, छोटे बच्चे की भांति हो गए। फिर तुम नग्न हो गए तो उस नग्न में सौंदर्य होगा, अपूर्व सौंदर्य होगा, निर्दोषता होगी। हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कली आई खोटी, इस जमाना बुरा आया है। अब तो एक ही उपाय है कि जो तुम्हारे हृदय में हो उसको तुम्हारे आचरण में बहने दो। अब वे दिन गए जब लोग सूक्ष्म में जीते थे, अब तो स्थूल में बताना होगा। ये स्थूल युग आया, यह कली आई खोटी, ये जमाना स्थूल का है। लोग शरीर को मानते, आत्मा को तो मानते ही कहां, लोग संसार को मानते, परमात्मा को मानते ही कहां, लोग तो पत्थर को मानते, प्रेम को मानते ही कहां। ये जमाना तो खोटा आया, यहां तो लोग जिसका दर्शन हो सके, स्पर्श हो सके, इंद्रियों से पकड़ में आ सके उसको मानते। तो अब तुम्हें धर्म को भी इस योग लाना होगा। हृदय का भाव हाथ में जानिए, इसलिए हृदय में ही रखने की बात नहीं, इसे अपने हाथ में लाना होगा। अगर हृदय में प्रेम है तो हाथ से प्रेम बांटना होगा, अगर हृदय में देने का भाव है तो हाथ से देना होगा, अगर हृदय में सेवा है तो हाथ से करनी होगी। अब हृदय से ही काम पूरा ना हो पाएगा। अब तुम जो सोचते हो, जो भीतर जीते हो, उसे बाहर भी अभिव्यक्ति देनी होगी। ये जगत तो अब आचरण को ही पकड़ सकेगा, अब ये हृदय के भावना पकड़ सकेगा। पुराने दिन और थे, गोरख बड़ी ठीक बात कह रहे हैं। बुद्ध बैठ गए बोधि वृक्ष के नीचे और हम सब ने पहचान लिया था, जो पहचान सकते थे उन्होंने पहचान लिया था। उस सन्नाटे में, उस चुप्पी में भी बुद्ध को पहचान लिया था। हृदय का भाव हृदय में ही रहा था, बाहर नहीं आया था, हाथ में प्रकट नहीं हुआ था। बुद्ध ने करुणा बरसाई मगर वो हृदय की थी, अस्पताल नहीं खोले, नहीं तो हाथ की हो जाती। प्याऊए नहीं खोली, नहीं तो हाथ की हो जाती। बीमारों के हाथ पैर नहीं दबाए, नहीं तो हाथ की हो जाती। इस अर्थ में जीसस ज्यादा कलयुग के करीब है। जो हृदय का था उसे हाथ में लाए, अंधों को आंखें दी कि लंगड़ों को पैर दिए कि बीमारों की सेवा की। अगर इस दुनिया में ईसाइयत का प्रभाव बढ़ता जाता है तो उसका और कुछ कारण नहीं, उसका कारण यह है कि ईसाइयत के पास स्थूल की पकड़ है। और जो पुराने धर्म हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनकी पकड़ अभी स्थूल पर नहीं है, इनकी पकड़ अभी भी सूक्ष्म पर है। ये पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं, ये सतयुग की बातें कर रहे हैं, मगर यह कली आई खोटी, अब जमाना और है। जो चीज तुल सकती तराजू पर वही मानी जाएगी। हिंदू बहुत परेशान रहते कि लोग ईसाई क्यों बनाए जा रहे हैं, लोगों को रुष्वत दी जा रही, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा, ये सब बकवास है, कोई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बना रहा है। लेकिन ईसाईयत इस युग के बड़े अनुकूल मालूम पड़ती है, गरीब को लगता है कि कुछ सहारा मिला। बुद्ध ध्यान की बात करते, गरीब को ध्यान से कुछ लेना देना नहीं। गरीब कहता है ध्यान की बात पीछे, भोजन कहाँ है? ईसाई मिशनरी आता है वो पहले भोजन की बात करता है, ध्यान की तो वो कभी बात करता ही नहीं। वहां सिर्फ भोजन ही भोजन है, अस्पताल खोल देता है, स्कूल खोल देता, कारखाना लगा देता, अच्छे कपड़े लोगों को मिल जाते, नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। लोगों को लगता है कि ये बात ठीक है, ये धर्म की बात हो रही है। ईसाइयत बढ़ती चली गई, आज दुनिया में एक तिहाई ईसाई सारे धर्मों पर छाती चली गई, और उसका कुल कारण इतना है कि इस देश के धर्म सतयुग की भाषा ही बोले चले जाते। अभी भी हम कहते हैं कि साधु की सेवा करो, और ईसाई कहता है कि साधु वह जो सेवा करे। इन दोनों का फर्क समझ लो। साधु आ जाए हम सब उसके पैर दबाने जाते। जैन तो कहते ही हैं, अगर उनसे पूछो कहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं साधु महाराज की सेवा करने जा रहे हैं। ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि साधु और हमारी सेवा करे। साधु अगर तुम्हारे पैर दबाने लगे तुम एकदम उछक के खड़े हो जाओगे, तुम कहोगे ये क्या करते महाराज, नरक भिजवाओगे, आप मेरा पैर दबाते, मुझसे कोई कसूर हुआ, आप नाराज, पैर मैं दबाऊंगा। मगर ये बातें बदल गई, ये भाषा सतयुग की है। जब साधु के पैर दबाए जाते थे, क्योंकि तब लोगों के पास आंखें भी थी कि सूक्ष्म को देख सके, हृदय प्रगट था, पारदर्शी था। अब हालत ऐसी नहीं है, गोरख के जमाने में भी ना रही होगी। तब तो गोरख कहते हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कल आई खोटी, बदंत गोरख सुनो रे अवधु, कर्ब होई सो निकसे टोटी। अब तो प्रमाण देना होगा, जैसे कि हम नल खोलते ना तो टोंटी में से पानी निकलता, अंदर हो तो ही निकलता, अंदर ना हो तो अकेले टोंटी खोलने से कुछ नहीं होता। मैंने सुना है लॉरेंस ने अरब के लोगों की बड़ी सेवा की। लॉरेंस एक अद्भुत आदमी था, उसने जितनी अरब जाति को उठाने की कोशिश की किसी दूसरे आदमी ने नहीं की। वो कुछ अरबी लोगों को लेके विश्व प्रदर्शनी होती थी पेरिस, तो गया दिखाने, बड़ी होटल में उनको ठहराया। मगर वो बड़ा हैरान हुआ, उनको किसी और चीज में मजे नहीं था, वो तो एकदम बाथरूम में घुस जाएं। अरब के निवासी, पानी की मुश्किल, वर्षों पानी न मिले ऐसी हालत, नहाना धोना कहां, और यहां एकदम टोंटी खोलो कि बस फवारा जारी, पानी 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 पानी। जैसे ही वो प्रदर्शनी में एक से एक चीजें थी, मगर वो अरब कहे बस अब चलो होटल वापस, और जैसे वो होटल में आए कि वो गए बाथरूम में, और जो घुसे तो निकले ही ना। अलारस ने कहा कि ठीक, करने दो इनको, नहा लेने दो, मजा कर लेने दो, जितना पानी का करना है, बिचारों को पानी की तकलीफ। आखिरी दिन बड़ा अजीब मामला हुआ, सब सामान तो रख दिया गया कारों में, लॉरेंस जाके बैठ गया, रास्ता देख रहा, मगर वो सब नदारत। उसने आदमी भेजा, भाई जाके देखो वो बाथरूम में होंगे, आखिरी सोच रहे होंगे एक माल एक दफा और। वहां गए तो बड़ी हैरानी हुई, वो सब टोंटियां निकाल रहे थे। लॉरेंस ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये टोंटियां तो हम घर ले जाएंगे, ये टोंटियां बड़ी गजब की, जहां दिल चाहो खोलो बस पानी पानी। उन गरीब अरबों को क्या पता कि टोंटियों के पीछे बड़ा जाल है, टोंटियां दिखाई पड़ रही हैं, उनके अंदर पीछे और पाइप लगे हैं, और पाइप दूर सरोवरों से जुड़े, इस सब का उनको क्या पता। वो तो समझे कि टोंटी का मजा है, ये टोंटी बड़ी जादू की, खोल के अपने खीसे में रख लो, छोटी सी टोंटी किसको पता चलेगा। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह टोंटी खुल जाए, वो खुल भी नहीं रही थी, इसलिए देर भी लग रही थी। गोरख कहते हैं कि टोंटी खोलोगे तो वही निकलता जो भीतर है, तुम्हारे हाथ प्रमाण होने चाहिए तुम्हारे हृदय के। कोई वादी कोई बेवादी जोगी को बात न करना, वो कहते हैं पक्ष विपक्ष में मत पड़ना, यह ठीक वह ठीक इस झंझट में मत पड़ना, क्योंकि बिना जाने ठीक तय होता ही नहीं, ईश्वर है या नहीं इस बात में भी मत पड़ना, ऐसा है वैसा है इस विवाद में भी मत पड़ना, क्योंकि उस विवाद में जितना समय गया व्यर्थ ही गया, अड़सठ ही तीरथ संबंध समावे। और जैसे सारे तीरथ अंततः समुद्र में ही गिर जाते, गंगा हो कि यमुना हो कि सरस्वती हो कि गोदावरी हो कि नर्मदा हो, जैसे सारे तीर्थों को बनाने वाली नदियां अंततः जाके समुद्र में गिर जाती हैं, यूं जोगी को गुरुमुख झरना, ऐसे गुरु के मुंह से जो झर रहा है बस उसको योगी पी ले, पर्याप्त है, उसे वाद विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे सारे तीर्थ समुद्र में गिर जाते ऐसे ही सारे तीर्थ गुरु की वाणी में गिर रहे हैं। गुरु को खोज लिया फिर कोई चिंता वाद विवाद की नहीं करनी चाहिए, फिर रस लिप्त, फिर रस विमुक्त, फिर उसके साथ एक ताल में आबद्ध हो जाना चाहिए। अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, और सारी बात मन के चंगे होने की, आनंद मग्न होने की, फिर तुम्हें गंगा जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर की कठौती में ही गंगा है। अवधु मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बंध्या मेला तो जगत चेला, और एक दफा बंधन से छूट जाए तुम्हारा मन तो सारा जगत तुम्हारा चेला हो जाए। तुम एक बार मुक्त हो जाओ तो मत फिरो इस फिक्र में कि इसको समझाएं उसको समझाएं, इससे विवाद करें उससे विवाद करें, इसको जीते उसको अपने पक्ष में लाएं, इस सब में समय खराब मत करो। तुम मन से मुक्त हो जाओगे तो सारा जगत तुम्हारा चेला हो जाए, फिर जिन्हें भी सत्य की चाह है वे अपने से खींचे चले आएंगे, तुम्हें बुलाने भी उनके घर जाना ना होगा, वे तुम्हें खोजते चले आएंगे। बदंत गोरख सती स्वरूप, तत् विचारे त रेख न रूप। और गोरख कहते हैं कि जिसकी न कोई रेखा है न कोई रूप है न कोई परिभाषा है, उसका तुम विचार कैसे करोगे, उसका तो अनुभव ही हो सकता है। गुरु में डूबो, जिसने जाना है उससे जुड़ो, जिसने पहचाना है उसमें डुबकी मारो। जो स्वयं भी अपरिभाष्य हो गया है उसका स्वाद लो। यहुमन शक्ति यहुमन शिव, यही मन शक्ति है यही मन शिव, यह मन पांच तत्व का जीव, यही मन पांच तत्व है, पांच तत्वों से बना हुआ जीव है। कि सारा खेल मन का है, मन अगर बंधन में पड़ा है वासना के तो तुम संसार में उलझे रहोगे, और मन अगर वासना से उठ गया ऊपर तो तुम मुक्त हो गए। यह मन ले जे उन्मन रहे, बस इतना ही कर लो कि इसी मन के रहते रहते तुम उन्मन हो जाओ, अमन हो जाओ, जिसको जैन फकीर कहते हैं नो माइंड, वो उन्मन शब्द का ही अनुवाद है। उन्मन रहे, ऐसे रहो जैसे मन है ही नहीं, न कोई विचार न कोई वासना न कोई भाव, निर्विचार निर्भाव निर्वासना, चुप सन्नाटे में जियो, यही ध्यान है। यह मन ले उन्मन रहे तो तीनों लोक की बातें कहे, फिर तुम्हारे भीतर से तीनों लोकों के अदृश्य सत्य प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। दाबी न मारीबा, और इस मन को तुम दबा के ना मार सकोगे। दाबी न मारीबा खाली न राखीबा, और तुम चाहो कि इसको सदा खाली रख ले तो भी संभव नहीं। आज इतना है।